एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने करीब 25 साल पहले सच में दुनिया में काफी हलचल मचाई थी।
हाँ बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि उसकी बातें आज भी शायद पहले से ज्यादा मौजू हैं।
सही कहा। हम बात कर रहे हैं नाओमी क्लेन की बहुत ही प्रभावशाली किताब नो लोगों की। इसने तो जैसे एक पूरी पीढ़ी को सोचने पर लगा दिया था कि ये जो हमारे आसपास इतने सारे ब्रांड्स दिखते हैं,
हाँ
ये असल में हैं क्या और हमारी जिंदगी पे इनका असर क्या पड़ रहा है।
बिल्कुल, ये किताब यही दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ सामान बेचने से आगे बढ़ गईं, वो एक ब्रांड बेचने लगी, मतलब एक पूरी पहचान, एक जीने का तरीका।
और जो सबसे बड़ा सवाल ये किताब उठाती है और जो आज भी उतना ही जरूरी है, वो ये कि इस पूरी ब्रांड वाली दुनिया की असली कीमत हम सब मिलकर क्या चुका रहे हैं।
हमारी संस्कृति पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे पास जो विकल्प हैं उन पर, सब पर क्या असर पड़ा है?
तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये नाओमी क्लेन है कौन जिन्होंने इतनी जबरदस्त किताब लिखी।
नाओमी क्लेन वो कनाडा की एक बहुत जानी मानी लेखिका हैं, पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी।
अच्छा।
उनकी पहचान ही कॉरपोरेट दुनिया की जो ताकत है या वैश्वीकरण, पूंजीवाद, इन सब की गहरी और बहुत बेबाक आलोचना करने वालों में होती है। नो लोगो उनकी पहली बड़ी किताब थी जिसने उन्हें मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
और उनकी बातों में इतना दम क्यों माना जाता है? मतलब क्या चीज उनके विश्लेषण को इतना खास बनाती है?
देखिए, खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़कर रिसर्च नहीं की, वो असल में दुनिया घूमी।
अच्छा, कहाँ कहाँ गई?
वो गईं बड़े बड़े चमकते कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में भी, और फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसी जगहों की उन फैक्ट्रियों में भी जिन्हें स्वेट शॉप कहते हैं।
ओ, स्वेट शॉप्स, जहां बहुत बुरी हालत में काम करवाया जाता है।
हाँ बिल्कुल, जहां मतलब बेहद कम मजदूरी पर बहुत ज्यादा घंटों तक काम कराया जाता है। तो उन्होंने सीधे वहां काम करने वाले लोगों से, एक्टिविस्टों से बात की, जमीनी हकीकत को सामने रखा।
यानी सिर्फ किताबी बातें नहीं, असल दुनिया की रिपोर्टिंग।
हाँ, और उन्होंने सिर्फ आर्थिक विश्लेषण नहीं किया बल्कि उसका जो मानवीय पहलू है, जो लोगों पर असर पड़ रहा है, उसको जोड़ा।
ये तो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और उनकी एक और खूबी है कि वो बड़े आर्थिक ट्रेंड्स और हमारी जो रोजमर्रा की संस्कृति है उसके बीच के कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझाते हैं।
जैसे कि कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे वो दिखाती हैं कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर नाइकी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं जो आजादी और ताकत का मैसेज देते हैं, और हजारों मील दूर वियतनाम में नाइकी के जूते सिलने वाली एक महिला की असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है।
वाह, ये कनेक्शन देखना तो कमाल है।
हाँ, और एक और बात, वो उस पीढ़ी से हैं जो इसी ब्रांड कल्चर में पली बढ़ी हैं, तो उन्हें इसकी एक गहरी समझ भी है और इससे एक जरूरी आलोचनात्मक दूरी भी वो बनाए रख पाती हैं।
तो अब आते हैं किताब पर। नो लोगो, इसका मतलब मूल मंत्र क्या है, केंद्रीय विचार?
देखिए, सबसे बुनियादी बात जो क्लेन कहती हैं वो ये है कि 20वीं सदी के आखिर में दुनिया की कई सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लिया।
क्या फैसला?
उन्होंने तय किया कि उनका असली काम अब सिर्फ चीजें बनाना नहीं रह गया है, उनका असली काम है एक मजबूत ब्रांड इमेज बनाना और उसे बेचना।
अच्छा, तो ये सिर्फ मार्केटिंग का नया तरीका नहीं था?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव था। कंपनियों ने यह महसूस किया कि उनकी सबसे कीमती चीज उनकी फैक्ट्री या मशीनें नहीं है,
बल्कि
लोगों के दिमाग में बसी उनके ब्रांड की छवि है, वो कहानी जो उनके ब्रांड से जुड़ी है।
जैसे नाइकी का आपने जिक्र किया।
हाँ, नाइकी का उदाहरण ले, वो सिर्फ जूते नहीं बेच रहे थे, वो बेच रहे थे खेल के जरिए महानता पाने का एक आइडिया, एक सपना।
और ये आइडिया बेचना ज्यादा फायदेमंद था।
बिल्कुल, ये विचार बेचना जूते बेचने से कहीं ज्यादा मुनाफे वाला साबित हुआ उनके लिए।
तो इस बड़े बदलाव के फिर नतीजे क्या हुए?
क्लेन के मुताबिक इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी हमें? क्लेन का तर्क है कि इस बड़े बदलाव से तीन मुख्य ट्रेंड्स या रुझान सामने आए जिन्होंने हमारी दुनिया को मतलब बहुत गहराई से बदल दिया।
क्या थे वो तीन रुझान?
पहला, नो स्पेस, यानी सार्वजनिक जगहों का सिकुड़ना। ब्रांड्स ने धीरे धीरे हमारी जिंदगी के हर कोने पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
हर कोने पर?
हाँ, मतलब स्कूल, कॉलेज, पार्क, खेल के मैदान, संगीत कार्यक्रम, आर्ट गैलरी, हर जगह ब्रांड्स दिखने लगे, विज्ञापन, लोगो, जो चीजें पहले सबकी साझी होती थीं, वो अब किसी न किसी कंपनी के नाम के साथ आने लगी।
ये तो हम आज भी देखते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, नो चॉइस यानी विकल्पों का भ्रम। बाजार में भले ही हमें हजारों ब्रांड दिखते हों, लेकिन असल में कंट्रोल बस कुछ ही बड़ी कंपनियों के हाथ में आ गया।
कैसे?
बड़ी कंपनियां आपस में मिल गईं, या उन्होंने छोटी कंपनियों को खरीद लिया। फिर वॉलमार्ट या स्टारबक्स जैसी बड़ी चेन्स आईं, जिन्होंने अपनी ताकत से छोटी स्थानीय दुकानों को खत्म कर दिया।
तो नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि हर शहर, हर मॉल एक जैसा दिखने लगा। विविधता कम हो गई, असली चॉइस कम हो गई।
और तीसरा रुझान?
तीसरा, नो जॉब्स यानी नौकरियों का नुकसान और साथ ही शोषण। अपनी ब्रांड इमेज बनाने और मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा?
कहां से?
अनग्रिया ने उत्पादन लागत घटाई और इसका सबसे आसान तरीका निकाला गया, उत्पादन को उन देशों में भेजना जहां मजदूरी बहुत कम थी।
अच्छा, आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं।
हाँ, आउटसोर्सिंग। इससे पश्चिमी देशों में जो अच्छी पक्की नौकरियां थी मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो कम होने लगी और विकासशील देशों में मजदूरों का शोषण बढ़ा। उन्हीं को स्वेटशॉप कहा जाता है।
ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है, लेकिन आपने कहा था कि ये कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है, किताब प्रतिरोध की भी बात करती है।
हाँ हाँ, बिल्कुल। ये किताब जितनी कॉरपोरेट ताकत के बढ़ने की कहानी है, उतनी ही उसके खिलाफ आम लोगों के खड़े होने की भी कहानी है।
तो चलिए इन चारों हिस्सों को थोड़ा और खोलते हैं। पहला हिस्सा, नो स्पेस, सार्वजनिक जगहों का सिकुड़ना।
हाँ,
आजकल हम अपने शहरों में भी देखते हैं, हर तरफ विज्ञापन, होर्डिंग्स, दुकानों पर बड़े बड़े लोगो। ऐसा लगता है जैसे कोई खाली दीवार, कोई कोना बचा ही नहीं है जहां कोई ब्रांड न चिपता हो।
क्लाइन, यही तो बता रही हैं, कंपनियां सिर्फ विज्ञापन नहीं दिखाना चाहती थीं, वो संस्कृति का हिस्सा बनना चाहती थीं।
संस्कृति का हिस्सा कैसे?
उन्होंने स्कूलों के साथ सौदे किए कि भाई हमारे कैंपस में सिर्फ हमारी कोल्ड ड्रिंक बिकेगी। उन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल्स, आर्ट एग्जीबिशन, इन सब को स्पॉन्सर करना शुरू किया।
अच्छा, तो इससे क्या हुआ?
इससे कला और कॉमर्स मतलब व्यापार, इनके बीच की जो लाइन थी वो धुंधली हो गई। पता ही नहीं चलता था कि ये कला है या विज्ञापन।
हाँ,
और उनका खास निशाना थे युवा, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स।
युवाओं पर क्यों?
क्योंकि वो नए ट्रेंड्स बनाते हैं, वो कूल होते हैं। तो ब्रांड्स ने क्या किया, हिप हॉप या स्केटबोर्डिंग जैसी जो उपसंस्कृतियां थीं, जो पहले थोड़ी विद्रोही सी मानी जाती थीं।
हाँ,
ब्रांड्स ने उनके कूल फैक्टर को उठाया और उसे अपने जूते, कपड़े, ड्रिंक्स बेचने के लिए इस्तेमाल किया, और इस चक्कर में उनका जो असली मतलब था, जो विद्रोह था, वो कहीं खो गया।
यानी ब्रांड्स ने हमारी सोच और हमारी जगहों पर, दोनों पर कब्जा कर लिया
एक तरह से। हाँ,
तो जब जगह नहीं बची तो क्या हमारे विकल्प भी कम हो गए? यहीं से दूसरा हिस्सा, नो चॉइस, शुरू होता है।
बिल्कुल। क्लेन बताती हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वापस में विलय करती गई, मतलब मर्ज होती गई, या छोटी कंपनियों को खरीदती गई।
अच्छा।
इसे ऊपर से देखने पर लगता था कि बाजार में अरे वाह कितने सारे विकल्प हैं, लेकिन असल में मीडिया से लेकर रिटेल यानी खुदरा दुकानों तक सब कुछ कुछ गिनी चुनी महा कंपनियों के हाथ में आ गया।
और फिर वो कैटेगरी किलर्स का जिक्र आता है।
हाँ, कैटेगरी किलर्स ये शब्द इस्तेमाल होता है उन बड़ी चेन स्टोर्स के लिए, जैसे वॉलमार्ट या स्टारबक्स या गैप। ये इतने बड़े होते हैं और इतने मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं,
मतलब हर जगह एक जैसे।
हाँ, बिल्कुल। और ये अपनी जबरदस्त ताकत और कम कीमतों का इस्तेमाल करके आसपास की जो छोटी स्थानीय दुकानें होती हैं, उनको बाजार से बाहर कर देते हैं।
तो इसका नतीजा क्या हुआ शहरों पर?
नतीजा ये हुआ कि चाहे आप दिल्ली में हो या मुंबई में या लंदन में या न्यूयॉर्क में, आपको हर जगह वही दुकानें, वही कॉफी शॉप्स, वही कपड़े देखने लगे। शहरों का अपनापन, उनकी जो लोकल पहचान थी, वो खत्म होने लगी। सब एक जैसे लगने लगे।
और इसमें एक और बात थी कॉर्पोरेट सेंसरशिप की, कि बड़ी कंपनियां ये भी तय करने लगीं कि कौन सी किताब बिकेगी या कौन सी सीडी नहीं बिकेगी।
हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा अक्लाइन उठाती हैं। वो उदाहरण देती हैं कि कैसे वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल करते थे। अगर उन्हें किसी किताब या म्यूजिक सीडी या मैगजीन का कंटेंट पसंद नहीं आता था,
तो
वो उसे अपने स्टोर्स में रखने से ही मना कर देते थे। अब सोचिए, जब वॉलमार्ट जैसी बड़ी चेन मना कर देगी तो उस चीज का बिकना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरह से विचारों पर पहरा बिठाने जैसा था।
ये तो वाकई चिंता की बात है, लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है वो है नो जॉब्स, नौकरियों और मजदूरों की बात।
सही का। यहीं पर क्लेन खोखली निगम या हॉलो कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट लाती है।
खोखली निगम, ये क्या होता है?
सोचिए, एक ऐसी कंपनी की जिसके पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। वो बस अपना नाम यानी ब्रांड रखती है और एक मार्केटिंग टीम।
तो फिर वो सामान कैसे बनाती है?
सारा उत्पादन का काम वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी और कंपनी से करवाती है, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से। और कहाँ करवाती है? जहाँ मजदूरी सबसे कम हो।
अच्छा, नाइकी का नाम फिर से आता है इसमें?
हाँ, नाइकी इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण बनकर उभरा उस समय। वो खुद जूते नहीं बनाते थे, वो बस डिजाइन करते थे और बेचते थे, बनवाते कहीं और थे।
तो इसका असर क्या हुआ नौकरियों पर?
इसका दोहरा असर हुआ। एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों में, जहां पहले अच्छी तनख्वाहों वाली यूनियन वाली स्थायी मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां थीं, वो खत्म होने लगी।
उनकी जगह क्या आया?
उनकी जगह आई कम पगार वाली, अस्थायी, बिना किसी सुरक्षा वाली सर्विस सेक्टर की नौकरियां, जिन्हें क्लीन थोड़ा मजाक में मैक जॉब्स कहती हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले।
और दूसरी तरफ जिन देशों में उत्पादन भेजा गया वहां क्या हुआ?
दूसरी तरफ जिन देशों में ये उत्पादन भेजा गया, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, वहां बने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या ईपीजेड्स।
ईपीजेड्स ये क्या है?
ये ऐसे खास औद्योगिक इलाके होते हैं जहां बाहरी कंपनियों को उत्पादन करने के लिए टैक्स में भारी छूट दी जाती है, और जो श्रम कानून होते हैं उनमें भी ढील दे दी जाती है।
ओहो।
क्लेन ने इन जगहों पर खुद जाकर जो देखा, जो रिपोर्ट किया, वो सच में दिल दहलाने वाला था। ज्यादातर युवा महिला मजदूर, उनसे दिन में 12-14 घंटे काम लिया जाता था। मजदूरी इतनी कम कि गुजारा मुश्किल हो, काम करने की जगहें खतरनाक, असुरक्षित, और अगर कोई विरोध करे, आवाज उठाए, तो बस नौकरी से निकाल दिया जाता था।
ये तो उस चमकते हुए ब्रांड के पीछे की बहुत ही कड़वी अंधेरी सच्चाई है।
बिल्कुल, ये उस सशक्तिकरण और आजादी के विज्ञापनों से एकदम उलट कहानी थी जो ये कंपनियां दुनिया को दिखा रही थी।
यही वो विरोधाभास है जिसे क्लेन उजागर करती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, लोग हमेशा चुप नहीं बैठे रहे। और यहीं से किताब का चौथा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, नो लोगो, यानी प्रतिरोध का उदय।
हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बढ़ती हुई कॉरपोरेट ताकत को चुनौती दी गई, और कैसे दी गई।
तो कैसे दी लोगों ने चुनौती?
क्लेन बताती हैं कि कैसे आम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, छात्रों ने, कलाकारों ने नए और बहुत ही रचनात्मक, क्रिएटिव तरीकों से इन बड़ी कंपनियों को चुनौती दी।
जैसे?
एक तरीका था कल्चर जैमिंग या एड बस्टिंग। इसका मतलब है कंपनियों के ही विज्ञापनों और लोगों को लेना और उन्हें थोड़ा बदल कर मजाकिया या आलोचनात्मक तरीके से पेश करना, ताकि उनकी असलियत सामने आ जाए।
अच्छा, जैसे किसी मशहूर विज्ञापन के स्लोगन को बदलकर पर्यावरण या मजदूरों के शोषण पर कोई टिप्पणी कर देना।
हाँ एग्जैक्टली, जैसे एडवर्टाइजर्स नाम की एक मैगजीन थी जो यही काम करती थी। बहुत क्रिएटिव तरीका था ये कॉरपोरेट मैसेजिंग को तोड़ने का।
ये तो काफी दिलचस्प है, और क्या तरीके थे?
और भी थे, जैसे एक आंदोलन चला रिक्लेम द स्ट्रीट्स। इसमें लोग क्या करते थे कि अचानक किसी दिन शहर की किसी व्यस्त सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे, म्यूजिक बजाते थे, नाचते गाते थे, पार्टी करते थे
सड़क पर।
हाँ, और इस तरह वो कुछ समय के लिए उस सार्वजनिक जगह को कारों और विज्ञापनों के कब्जे से मुक्त करा लेते थे, अपनी जगह पर दोबारा दावा करते थे।
वाह, और वो स्वेटशॉप्स के खिलाफ भी कुछ हुआ?
हाँ, विश्वविद्यालयों में छात्रों ने बहुत जोरदार अभियान चलाया, इसे एंटी स्वेटशॉप मूवमेंट कहा गया।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज पर दबाव डाला कि यूनिवर्सिटी के लोगों वाले जो कपड़े, टी शर्ट्स वगैरह बनते हैं, वो ऐसी फैक्ट्रियों में ना बने जहां मजदूरों का शोषण होता हो। उन्होंने बाकायदा नैतिक कोड बनाने की मांग की। नाइकी और गैप जैसी कंपनियां उनके निशाने पर थी।
और क्या इन सबका कोई असर हुआ? क्या कंपनियों ने सुना?
हाँ असर हुआ, इन अलग अलग प्रतिरोधों ने मिलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, और इसकी एक बहुत बड़ी झलक दुनिया को 1999 में अमेरिका के सिएटल शहर में देखने को मिली।
सिएटल में क्या हुआ था वहां?
वहां विश्व व्यापार संगठन WTO की एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, और उसके खिलाफ हजारों लोग, अलग अलग तरह के लोग सड़कों पर उतर आए। पर्यावरणवादी थे, मजदूर संगठनों के लोग थे, छात्र थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे,
सब एक साथ।
हाँ, सब एकजुट थे, और वो सब मिलकर कॉरपोरेट नेतृत्व वाले वैश्वीकरण का विरोध कर रहे थे। इसे बैटल ऑफ सिएटल कहा गया, और इसने दुनिया को दिखा दिया कि एक नया ग्लोबल नागरिक आंदोलन खड़ा हो रहा है जो कॉरपोरेट ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार है।
और ये आंदोलन उन्हीं के हथियार इस्तेमाल कर रहा था।
हाँ, ये भी दिलचस्प था, वो मीडिया का, इंटरनेट का, यहाँ तक कि ब्रांडिंग का तरीकों का इस्तेमाल अपनी बात कहने के लिए कर रहे थे।
तो इस पूरी किताब को, इस पूरी चर्चा को समेटे अगर, तो वो कौन से मुख्य सबक या संदेश हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जो सबसे जरूरी लगते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होते। वो एक विचार बेचते हैं, एक पहचान बेचते हैं, एक कहानी बेचते हैं। कंपनियों ने यह समझ लिया था कि चीज बनाने से ज्यादा ताकतवर है लोगों के मन में एक अर्थ, एक मतलब बनाना।
जैसे नाइकी जूते से ज्यादा जीत बेचता है।
बिल्कुल। दूसरा, ये जो चमकदार ब्रांड इमेज होती है, ये अक्सर एक अंधेरी सच्चाई छुपाती है, और वो सच्चाई है उत्पादन लागत कम करने के लिए किया जाने वाला श्रम शोषण। ये जो खोखली निगम का मॉडल है, जहां कंपनियां उत्पादन की जिम्मेदारी से बच निकलती हैं, इसके कुछ रूप हम आज भी आउटसोर्सिंग और गिग इकोनॉमी में देख सकते हैं।
हाँ, ये बात तो है। और तीसरा सबक?
तीसरा ये कि ब्रांड्स ने हमारी सार्वजनिक जगहों पर और यहां तक कि हमारी मानसिक जगहों पर भी कब्जा कर लिया है। हमारे स्कूल, हमारे शहर, हमारी संस्कृति, सब कुछ धीरे धीरे बिकाऊ बनता जा रहा है। इससे जो असली गैर व्यापारिक विचार हैं, जो समुदाय की भावना है, उसके लिए जगह कम होती जा रही है। सोचिए कैसे बड़े बड़े मॉल ने हमारे पड़ोस के छोटे बाजारों की रौनक छीन ली है।
सही कहा। चौथा?
चौथा है विकल्पों का भ्रम। बाजार में भले ही चमक दमक ज्यादा दिखे, चीजें ज्यादा दिखें, लेकिन असली आर्थिक शक्ति कुछ ही कंपनियों के हाथों में सिमट रही है। इससे स्थानीय विविधता और असली चुनाव कम हो रहे हैं। सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है।
और पांचवा?
उम्मीद वाला सबक।
हाँ, पांचवा और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाला सबक है आम नागरिकों के प्रतिरोध की ताकत। क्लेन दिखाती हैं कि जब लोग संगठित होते हैं, रचनात्मक तरीके अपनाते हैं, तो वे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर शक्तियों को भी चुनौती दे सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो इन बातों को और पुख्ता करते हैं। कुछ ऐसे कोट जैसे विचार जो याद रह जाते हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे एक जो केंद्रीय विचार है वो कुछ इस तरह है, बड़ी कंपनियों की ताकत और उनका असर इसलिए इतना बड़ा क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली कि सफल होने के लिए उन्हें मुख्य रूप से उत्पाद नहीं बल्कि ब्रांड बनाना चाहिए। ये सीधे सीधे उनकी बदली हुई रणनीति की तरफ इशारा करता है।
और वो खोखली निगम वाली बात पर?
हाँ, उसके बारे में क्लेन लिखती हैं कुछ इस तरह कि कंपनियां भारहीन होना चाहती थीं, मतलब कम संपत्ति हो लेकिन छवि ज्यादा शक्तिशाली हो। इसलिए उन्होंने उत्पादन का जो गंदा या मुश्किल काम था वो दूसरों पर डाल दिया, आउटसोर्स कर दिया, ताकि वे ब्रांड बनाने के साफ सुथरे, ज्यादा मुनाफे वाले काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने असल मेहनत और जिम्मेदारी से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया।
और संस्कृति पर कब्जे के बारे में भी एक जरूरी विचार था।
हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ब्रांड फैलते हैं, गैर व्यापारिक संस्कृति और समुदाय के लिए जो भौतिक स्थान है वो सिकुड़ता जाता है। ब्रांड का मकसद सिर्फ संस्कृति को स्पॉन्सर करना नहीं रह जाता बल्कि वो खुद ही संस्कृति बन जाना चाहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हमारी संस्कृति भी अब बिक रही है।
और आखिर में प्रतिरोध के बारे में वो क्या कहती है?
प्रतिरोध के बारे में वो कहती हैं, कल्चर जैमिक विज्ञापन की ही भाषा, यानी तस्वीरें, नारे, लोगों का इस्तेमाल करके विज्ञापन देने वाले की ताकत पर सवाल उठाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि प्रतिरोध कितना स्मार्ट और क्रिएटिव हो सकता है, उन्हीं के हथियार से उन पर वार करना।
ये सब बातें सुनने में तो बहुत जरूरी लगती हैं, लेकिन ये किताब तो करीब 25 साल पुरानी है। आज की हमारी जिंदगी में, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, हम इन विचारों का क्या करें, इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं?
ये सवाल बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहली चीज जो हम सब कर सकते हैं वो है एक ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बनना।
जागरूक उपभोक्ता मतलब
सिर्फ लोगों देखकर या विज्ञापन की चमक दमक देखकर चीजें ना खरीदें। थोड़ा रुक कर सोचें, अच्छा ये चीज किसने बनाई है, किन हालात में बनाई गई होगी, क्या ये कंपनी पर्यावरण का ध्यान रखती है, समाज के प्रति इसकी क्या जिम्मेदारी है। हम जानबूझकर ये फैसला ले सकते हैं कि हम स्थानीय कारीगरों का, छोटे व्यवसायों का या उन कंपनियों का समर्थन करेंगे जो नैतिक रूप से सामान बनाती हैं।
हाँ, ये तो किया जा सकता है। और विज्ञापनों की जो दुनिया है, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है।
बिल्कुल, यहाँ मीडिया और विज्ञापन साक्षरता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि कब हमें सिर्फ उत्पाद बेचा जा रहा है और कब उसके साथ कोई भावना, कोई पहचान या कोई सपना बेचा जा रहा है। क्या ये इन्फ्लुएंसर वाकई इस चीज को पसंद करता है या सिर्फ पैसे लेकर तारीफ कर रहा है। इन संदेशों को डिकोड करना सीखना होगा, उनकी परतें खोलनी होंगी।
और वो जो श्रम के मुद्दे थे स्वेटशॉप्स वाले, क्या वो आज भी प्रासंगिक है, शायद नए रूपों में?
हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक है। खोखली निगम का जो सिद्धांत क्लाइन ने बताया था वो आज की गिग इकोनॉमी से बहुत जुड़ता है।
गिग इकोनॉमी जैसे ऊबर, जोमैटो वगैरह।
हाँ, जहां ऐप आधारित कंपनियां अपने ड्राइवरों या डिलीवरी वर्कर्स को अपना कर्मचारी नहीं मानती, उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा या लाभ नहीं देती, उन्हें पार्टनर कहती हैं। लिविंग वेज यानी गुजारे लायक तनख्वाह की लड़ाई आज भी दुनिया भर में जारी है। तो ये किताब हमें इन आधुनिक श्रम मुद्दों की जड़ों को समझने में मदद करती है।
और एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है?
देखिए, किताब यही दिखाती है कि जमीनी स्तर की सक्रियता यानी ग्रासरूट एक्टिविज्म बदलाव ला सकता है। हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे के बारे में लिखकर हो, किसी ऑनलाइन पिटीशन पर साइन करके हो, किसी अभियान का समर्थन करके हो, या फिर अपने आसपास स्थानीय स्तर पर संगठित होकर। कि बड़ी चेन्स कैसे हर जगह एकरूपता लाती हैं, लोकल कल्चर को खत्म करती हैं, तो हम जानबूझकर अपने पड़ोस की दुकान से, स्थानीय रेस्तरां से या किसी छोटे कारीगर से खरीदारी करने का महत्व समझ सकते हैं। ये भी एक तरह का प्रतिरोध है।
तो अंत में इस गहरी और लंबी चर्चा के बाद आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि ब्रांड ये सिर्फ खूबसूरत लोगो या कैची स्लोगन नहीं है, ये असल में बहुत शक्तिशाली राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतें हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को, हमारी सोच को, हमारी इच्छाओं तक को घड़ा है। और अक्सर इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे कंपनियां हमें दिखाना नहीं चाहती, चाहे वो मजदूरों का शोषण हो या हमारी संस्कृति का बाजारीकरण।
और मेरे लिए ये किताब इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे दुनिया के अलग अलग दिखने वाले मुद्दे, मार्केटिंग कैसे होती है, मजदूरों के अधिकार क्या हैं, हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है, पर्यावरण का क्या हो रहा है, ये सब असल में आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये वैश्वीकरण की एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड तस्वीर पेश करती है।
हाँ।
और साथ ही ये उम्मीद भी जगाती है, ये दिखाती है कि बदलाव संभव है। आम लोग अगर ठान लें, अगर मिलकर आवाज उठाएं, तो दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों को भी जवाबदेह बना सकते हैं।
बिल्कुल, नौ लोगों में जो सवाल उठाए गए थे, जो मुद्दे थे, ब्रांड का जुनून, उत्पादन का आउटसोर्स होना और उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ नागरिक प्रतिरोध, ये सब आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, शायद और भी ज्यादा जटिल रूपों में।
इसीलिए 21वीं सदी में ताकत कैसे काम करती है, बाजार कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए ये किताब आज भी एक जरूरी दस्तावेज है।
हाँ, बहुत जरूरी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।